गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नी विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अपने धन में रहता हूँ मैं अपने धन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 श्री राधे
बालकृष्णलाल गोप प्राणवल्लभ गोवर्धनधारी द्वारकाधीश मेरे परम इष्ट देव उनके चरणों में साष्टांग नमन। समस्त पधारे हुए विद्युत मंडली श्रोतागण रसिकगण एवं मेरे गोविंद के परम प्रेम रहे इन सभी को व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। आज नैमिषारण्य में बैठे ऋषि वृंदों ने सूजी महाराज जी से कहा कि गुरुदेव आगे क्या हुआ। जब नारद जी ने अपनी कथा श्री व्यास जी के लिए सुनाई थी, व्यास आशीन श्री सूत जी महाराज कहने लगे, कहे ऋषि वृंद, नारद जी के कहने पर व्यास जी ने बृहद ग्रंथ श्रीमद भागवत कथा की रचना करी। चार मंत्रों को बारह स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। मन में एक बड़ी समस्या है, इस ग्रंथ को लिख तो दिया लेकिन किसको सुनाऊं? जो जन जन तक भागवत कथा को सुना सके। मन में बड़ी एक चिंता हुई और विचार भी आया, नेत्र बंद करके विचार किया तो कोई सुयोग पात्र होना चाहिए। सिवाय सुखदेव के कोई दिखाई नहीं दिया और मन में एक विचार आता है, अगर मैं इस कथा को अपने सुखदेव जी यानी अपने पुत्र को सिखा दूं तो दुनिया क्या कहेगी, और भागवत कथा का मूल उद्देश्य है जिसने काम को जीत लिया, जिसने क्रोध को जीत लिया, वही श्रीमद् भागवत कथा कहने का सच्चा अधिकारी है। तो मन में विचार आया, यहां व्यास जी ने अपने दो शिष्यों को भेजा, बड़ा सुंदर मंत्र दिया और कहा, आपको जहां कहीं भी सुखदेव जी मिल जाएं, तो इन मंत्रों को पढ़ देना। मंत्र बड़े सुंदर थे।
बहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकार कह बृहदावास कनक कपीसम वैजयंतीम च माला।
बड़ा सुंदर मंत्र दिया। आज सुखदेव जी महाराज पीठ आकाश की तरफ, मुख नीचे को किए हुए जमीन की तरफ और मस्त रहते हैं, जिनको किसी बात की चिंता ही नहीं। जब ये उन शिष्यों से ये मंत्र सुना, मंत्र बड़ा सुंदर, बहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकार कह, एकदम से कान खड़े हो गए। ये इन सुंदर मंत्रों की ध्वनि किधर से आ रही है? और दौड़ करके गए और कहा कि आप रुक क्यों गए, इन मंत्रों को आगे कुछ बोलिए ना। शिष्यों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हमारे गुरुदेव उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, अगर यही सीखना है तो आप हमारे गुरुदेव के आश्रम में चले और वहां चल करके वार्ता करें। इतना सुनने के बाद फिर चुप पड़ गए। जैसे ही चुप पड़े तो शिष्य जाकर के व्यास जी को जाकर के कहते, गुरुदेव हाँ ये मंत्र तो पढ़ा था लेकिन उनके उनमें थोड़ी सी हलचल पैदा हुई और आकर के कहा कि आगे सुनाइए। ओहो समझ में आ गया, ये मंत्र शक्ति के माध्यम से मंत्रों के द्वारा ही ये भागवत सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। बड़ा दूसरा मंत्र दिया, अहो वक्यम स्तन कालकूटम जिघासया पाया यदा पय साधवी लेभे गतिम धात्रयो चिंतम तंतोरयम कुंभम दयालु शरणम ब्रजेमह। जब ये कहा सुखदेव जी ने कहा कि आगे सुनाओ, शिष्यों ने कहा आगे हम नहीं जानते, हमारे गुरु जी के आश्रम में चलिए। यह सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में गए और जाकर के नमन किया, कहा कि पिताजी आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दें। व्यास जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए और विचार करने लगे कि भागवत को उसे सुनाना चाहिए जिसने अपने जीवन में काम और क्रोध को जीत लिया हो। अगर मैं अपने आप में कहूं कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीत लिया है, हर संसारी जीव क्या कहेगा? व्यास ने अपने पुत्र की तरफदारी करने के बाद कहा कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीत लिया, बोले ऐसा नहीं। आज सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए व्यास जी ने राजा जनक जी के वहां भेज दिया और राजा जनक जी का शुद्ध नाम है विदेही, जिसको अपने देह का ज्ञान ना हो वो विदेही है और बड़े ज्ञानी है। राजा जनक जी के बराबर कोई ज्ञानी नहीं हुआ और राजा जनक जी के राज्य में ज्ञानियों की ही सभा होती है, एक से ज्ञानी आकर के ज्ञान बांटता है, तो राजा जनक जी के बराबर ज्ञानी हो ही नहीं सकता। और बड़ा सुंदर पत्र लिख दिया और कहा ये मेरा दत्तक पुत्र मेरे से भागवत कथा सुनने के लिए आया था, हमारी तरफ से आपको निवेदन है आप इनकी किसी भी तरीका से परीक्षा ले। सुखदेव जी राजा जनक जी के वहां पहुंचे और राजा जनक जी को सुखदेव जी ने संदेश दिया, व्यास नंदन आपसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं। तो यहां जनक जी ने अपने सेवकों से कहा कि उनसे कहो हमारे पास अभी 5 दिन तक समय नहीं है, आप 5 दिन तक वहीं रहें। कितना वीतरागी संत, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे करके 5 दिन निकल गए और 5 दिन निकलने के बाद में जनक जी ने एक सेवक से कहा कि जाओ जाकर के देख करके आओ, व्यास नंदन सुखदेव जी बाहर दरवाजे पर खड़े हुए हैं, देखना उसके मुख पर कोई किसी तरीका का कोई चिंता या क्रोध की रेखा दिखाई तो नहीं दे। जनक जी के द्वारपाल गए और जाकर के देखा, जैसा 5 दिन पहले चेहरा था आज वैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि क्रोध को जीत लिया, आज का जीव बिल्कुल विपरीत है, किसी का इंतजार नहीं करना चाहता। अगर थोड़ा सा ज्ञानी हुआ, थोड़ा सा 2-4 पैसा पास में हुआ तो क्रोध करने में वो जीवात्मा रुकेगा नहीं और अपने आप को बड़ा अच्छा ठहराएगा, क्रोध करता रहेगा, बड़ों के सामने, संतों के सामने, अपने आप को न जाने कितना बड़ा बताएगा कि मुझे ऐसा वैसा थोड़ी समझ रखा है, ये जीव की भ्रांति है। सुखदेव जी संसारी जीव को ये बताना चाहते हैं, मैं इतने बड़े पिता का पुत्र जिन्होंने चार वेदों को लिख दिया, छह शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखे, सारे ग्रंथों को लिख दिया, उनके पुत्र के मुख पर चिंता की क्रोध की एक भी रेखा नहीं। आज का जीव एक मिनट किसी का इंतजार नहीं कर सकता, अगर इंतजार कर भी लिया तो ना जाने क्या क्या बोल पड़ेगा। बड़ा एक सुंदर सूत्र है, क्रोध जीव के जीवन का किया हुआ पुण्य को क्षण में नष्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक माचिस की तिल्ली होती है, उस माचिस की तिल्ली के ऊपर थोड़ा सा मसाला होता है और वही थोड़ा सा मसाला माचिस के रगड़ा खाने से जल करके नष्ट कर देता है। अब देखो बड़ा सुंदर प्रसंग है, ये माचिस को ढकने वाला जो बॉक्स होता है माचिस के अंदर, उसके अंदर जो सारी जो तिल्लियां ढकी हुई रहती है, उसको जलाने वाला कौन है? जो उसकी स्वयं रक्षा कर रहा है। बॉक्स की स्वयं रक्षा करने वाला ही उसको जला करके खाक कर देता है। क्यों? जब तक सुरक्षित है, जब तक वो माचिस के बॉक्स के अंदर है, बाहर निकलते ही जैसे बाहर आएगा, यकीन मानना संसारी जीव तुम्हें पकड़ करके माचिस से रगड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे कर्म तुम्हें संसार में आकर के रगड़ देंगे, माचिस की तिल्ली की तरह जलना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, ये सुखदेव जी का दृष्टांत, ये सुखदेव जी का माध्यम से संसारी जीव को बताया गया है। स्वयं जीव एक माचिस की तिल्ली है, लेकिन हमारा आवरण, हमारा ओरा, ये सब ढके हुए हैं। जिस दिन माचिस की तिल्ली की तरह बाहर निकल करके आओगे, जैसे कि एक छोटी सी माचिस की तिल्ली का मसाला और उस खोखले से रगड़ा खाते ही जल करके नष्ट हो जाता है, स्वयं भी जल जाता है, पर आसपास कर जितनी भी लकड़ियां होती है या भी जितने भी जलने योग्य साधन होता है सब जल करके नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से थोड़े से द्वारा किया हुआ क्रोध स्वयं जल करके नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। परम पूज्य श्री सुखदेव जी ने क्रोध नहीं किया, ऐसे कैसे खड़े रहे। जनक जी के मन में विचार आया, मैं क्या करूं? पांच दिन तक परीक्षा लेने के बाद क्रोध नहीं हुआ। मन में विचार आया, पिताजी का आदेश है, यानी व्यास जी का आदेश है, तो परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। आज सुखदेव जी की सेवा में राजा जनक जी ने एक से एक सुंदर स्त्रियों को भेज दिया। वो स्त्रियां इधर उधर से आलिंगन करने लगी, स्पर्श करने लगी, लेकिन मेरे परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज अपने दोनों नेत्रों को बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता स्त्री कौन है पुरुष कौन है। जब जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं, तो संसार उनके लिए सब व्यर्थ ही दिखाई देता है। कहने का भाव यह है, राजा जनक जी के मन में विचार आया, मैं क्या करूं? सुखदेव जी अनंत विभूति के मैं कैसे परीक्षा ले सकता हूं? जनक जी स्वयं कहने लगे, सुखदेव जी आप तो करुणा के सिंधु हैं, आपकी परीक्षा मैं क्या ले सकता हूं? लेकिन क्या करूं, आपके पिता यानी व्यास जी का आदेश था, उनके कहे अनुसार आपसे मिलने का बहाना भी हो गया, आपके दर्शन भी हो गया। इतना कहने के बाद राजा जनक जी ने संसारी जीव को बता दिया, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। जनक जी ने जिसके जीवन में मोहर लगा दी, उसको टाल नहीं सकता। कहने का भाव, व्यास जी ने सुखदेव जी के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। आइए, राधा रानी का नाम लेते हुए हम सभी लोग चलते हैं। राधे 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 राधे, राधे।